पिंकेश कुमार की आवाज़ में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास चैप्टर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अधिनियम के पारित होने के कारण प्रथम कारण 1919 के अधिनियम से उत्पन्न असंतोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने दिसंबर 1919 के अमृतसर अधिवेशन में मॉन्टफोर्ट सुधारों को पर्याप्त असंतोषजनक तथा निराशाजनक की संज्ञा दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्य रहित उष्मा कहा और रेनी बेसेंट ने इन सुधारों के विषय में कहा था, ये सुधार इंग्लैंड के देने योग्य नहीं है और भारत के स्वीकार करने योग्य नहीं। फिर भी कांग्रेस ने उत्तरदायी सहयोग की नीति अपनाने को कहा था। दुर्भाग्य से इंग्लैंड की रूढ़िवादी सरकार ने तथा भारत की लॉर्ड रीडिंग की सरकार ने मॉन्टफोर्ट सुधारों की उदारता को, जो भी उदार भावनाएं थी, उसे अपने व्यवहार तथा नियमों से समाप्त कर दिया। दूसरा कारण 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन। 1920 की राजनीतिक घटनाओं ने कांग्रेस तथा गांधी जी का भ्रम पूर्ण रूपेण भंग कर दिया। सरकार ने पंजाब में हुए अन्यायों का उपचार करने का कोई प्रयत्न न किया और न ही भारतीय मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन की गुत्थी को संतोषपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया। सुधारों का श्री गणेश जनवरी 1920 में हुआ और इसी वर्ष कांग्रेस ने असहयोग का आह्वान किया। तीसरा, स्वराज दल की अवरोध की नीति। समय बीतने के साथ 1919 के अधिनियम का विरोध अधिक दृढ़ तथा प्रभावशाली होता गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, विशेषकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने, स्वराज दल की नींव रखी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था विधानमंडल को भीतर से नष्ट करो तथा प्रण किया था कि वे एक रूप ढंग से लगातार तथा दीर्घकालिक अवरोध उत्पन्न करेंगे। 1923 के चुनावों में इसे बंगाल तथा मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा अन्य कई प्रांतों में यह दल सबसे बड़े दल के रूप में आया। अपने चातुरी तथा हथकंडों से इन्होंने सरकार के पाखंड का भंडाफोड़ कर दिया। चौथा, 1927-30 का साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के एक्ट को पारित करते समय यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात इसका मूल्यांकन किया जाएगा। अतएव समय अनुसार इसका मूल्यांकन 1930 अथवा 31 में होना चाहिए था, परंतु दिसंबर सरकार ने नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति इस अधिनियम की समीक्षा के लिए कर दिया। अतः यह भारत में हर जगह साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा गूंज उठा तथा सरकार की प्रशासनिक नीति के प्रचलन, शिक्षा की वृद्धि तथा अंग्रेजी प्रदेशों के प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास आदि विषयों पर जांच करनी थी इस कमीशन को तथा किस सीमा तक विद्यमान उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत का स्थापन विस्तार करना है। जिस दिन आयोग भारत में पहुंचा, समूचे देश में पूर्ण हड़ताल की गई और हर जगह काली झंडियों से उसका स्वागत किया गया। अतः सरकार कमीशन ने अपने रिपोर्ट में एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना तथा सदस्य परोक्ष पद्धति द्वारा प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुने जाने की सिफारिश की। 1928 का नेहरू रिपोर्ट। 1928 में सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने एक सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस बुलाई। सभी उद्देश्य था सभी दल मिलकर सरकार से अपनी मांगें प्रस्तुत करें। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने संविधान का सर्वानुमोदित रूप प्रस्तुत किया। इसमें मुस्लिम लीग के श्री जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 संकेत में भी अपने आरक्षण को प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि शरारत भरी सांप्रदायिक चुनाव पद्धति त्याग दी जाए तथा उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों के एक इकाई वाला संविधान प्रस्तुत किया जाए, जिसके द्वारा भारत को केंद्र तथा प्रांत में पूर्ण औपनिवेशिक स्वशासन मिले। 1929 की लॉर्ड अरविन की डोमिनियन स्टेट्स के विषय में घोषणा। 1929 में लॉर्ड इरविन ने रेमजे मैकडोनाल्ड की नवगठित श्रमिक दल की सरकार से मंत्रणा करने के उपरांत यह घोषणा की कि भारत की राजनीतिक उन्नति का अंतिम उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्ता प्राप्त करना है, अर्थात प्रांतीय स्वायत्ता तो अवश्य दी जाएगी परंतु समय निश्चित नहीं। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा की गई कि अंग्रेजी सरकार ने यह निश्चय किया है कि साइमन आयोग की रिपोर्ट को इंग्लैंड में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में विवेचना की जाएगी, जिसमें अंग्रेजी सरकार, भारतीय अंग्रेजी प्रदेश तथा भारतीय रियासत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930-31 तथा 1932 में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, पहले कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भाग नहीं ले सकी थी क्योंकि स्वामी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था तथा 1932 में अपना प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय दे दिया, जिसके अनुसार प्रांतीय था केंद्रीय विधानमंडल में सीटों का विभाजन